أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. دیکھیں مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ولایت فقیہ کی اہمیت اور شرائط, اور ایک پریزنٹیشن میری ہے اس میں. اگر وہ چل جاتی ہے تو ٹھیک ہے, اور نہیں چلتی ہے پھر بھی ٹھیک ہے. اوکے, چل بھی گئی تو آپ لوگوں سے اتنے فاصلے پر اسکرین ہے کہ آئی ڈونٹ تھنک کہ آپ کو پیچھے والوں کو جو ہے وہ اس کی جو عبارت ہے, اس کا جو ٹیکسٹ ہے وہ زیادہ واضح نظر آئے گا. اس لیے کوشش کرتے ہیں چل جائے. ابھی تو جس لیپ ٹاپ میں میں سیٹ کر کے لے کر آیا تھا وہ اس میں نہیں لگ رہا ہے, اور یہ ابھی سٹارٹ ہو رہا ہے. انشاءاللہ تھوڑی دیر میں یہ سٹارٹ ہو جائے گا. جب تک تو کوئی بات نہیں, ہم اپنی بحث شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ٹائم زیادہ نہیں ہے. 10 منٹ گزر گئے اور 1 بجے ظاہر ہے کہ پھر اذان میرے خیال میں ہو جائے گی, نماز کا ٹائم ہو جائے گا, وقفہ کا ٹائم ہو جائے گا. ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے ولایت فقیہ, اور یہ لفظ آپ کا سنا سنایا ہے, خاص طور پر اصغریہ کے برادران, کیونکہ جو آپ کی اس پہ ویجے نہیں لگ رہا ہے نا, آگے آپ نے چل گیا. سر چلیں, آئی جائے گا تھوڑی دیر میں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصغریہ کے جو برادران ہیں وہ تو واقف ہوں گے ولایت فقیہ سے, کیونکہ پاکستان کی وہ نظریاتی تنظیمیں کہ جو اس نظام ولایت فقیہ سے وابستہ ہیں, ان میں اصغریہ آرگنائزیشن اور اصغریہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کا نام بھی شامل ہے. اب بات اتنی سی ہے کہ وہ برادران اور خواران جو اس قسم کی نظریاتی تنظیم سے وابستہ ہیں, وہ خود نظام ولایت فقیہ کو کتنا سمجھتے ہیں؟ اس میں دو الفاظ ہیں, دیکھیں ولایت ایک ہے فقیہ. ایک شیعہ کو تو ولایت کے بارے میں کافی معلومات ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے. کم از کم ہر شیعہ کو آیہ ولایت تو یاد ہونی چاہیے. ایک آیت ہے قرآن کریم کی جس کو ہم کہتے ہیں آیت ولایت. وہ کون سی آیت ہے؟ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55. سنی سنائی آپ کی آیت ہے, یاد بھی ہوگی آپ کو. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. کہ بے شک تمہارا ولی اور سرپرست, ولی بے معنی سرپرست. ابھی چونکہ ہم وہ بحث نہیں کر رہے ہیں کہ لفظ ولی کے کیا کیا معنی ہیں, ہم جو یہاں بیان کر رہے ہیں وہ شیعوں والا تصور, شیعوں والا تصور ولایت بیان کر رہے ہیں. اس لیے جب ہم کہتے ہیں ولایت تو اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی ہے سرپرست. انما ولیکم اللہ ورسولہ, بے شک تمہارا سرپرست اللہ ہے اور اس کا رسول ہے. والذین آمنوا, اور ایمان والوں میں سے وہ ہیں, الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون, کہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ اور رسول کے بعد اگر کسی کی ولایت ثابت ہے, اگر کسی نے نماز میں حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے, تو وہ صرف مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اور کسی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ نہیں دی, اور نہ کوئی دے سکتا ہے, نہ کوئی اس آیت پر عمل کر سکتا ہے قیامت تک, کیونکہ ایک واقعہ ہے جو ہو گیا. اس کے علاوہ کوئی مزید اگر یہی عمل دہرانا چاہے تو یہ ممکن نہیں ہے. गोया इस आयत का मतलब कुछ इस तरह बनता है कि तुम्हारा वली और सरपरस्त अल्लाह है और उसका रसूल है, और देखो ईमान वालों में से ये है जो हालत रुकू में ज़कात दे रहे। तो ये जो आयत है आया विलायत, इसमें खुदा की विलायत और पैगंबर की विलायत और अली अलैहिस्सलाम की विलायत जाहिर होती है, और अली अलैहिस्सलाम के बाद फिर हम औलाद अली व फातिमा में उन 12 आइमाए ताहिर की विलायत के कायल हैं कि जो इमाम कहलाते हैं, जिनके बारे में पैगंबर ने फरमाया कि मेरे बाद 12 इमाम होंगे, 12 खलीफा होंगे, 12 अमीर होंगे। अल्फाज थोड़े से मुख्तलिफ ज़रूर हैं, लेकिन ये हदीस वो है जो तमाम सुन्नी किताबों के अंदर भी मौजूद है। इस तरह हम लोग हैं जो 12 इमामों के कायल हैं, और हम 12 के 12 इमामों को मासूम अनिल खता और मनसूस मिन अल्लाह समझते हैं, यानी उनकी विलायत नस से साबित है। नस से मुराद ये कि कुरान की वाज़ह आयत या पैगंबर की मुतवातिर हदीस, तो वो नस से साबित है हमारे नज़दीक उनकी विलायत। तो 12 आइमाए ताहिरीन की जो विलायत है वो उसमें शामिल है, और इस विलायत को मकतबे तशय्यों में बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। ऐसी हदीसें एक नहीं हैं, 20 के करीब हैं। वसाइल शिया की एक हदीस मसलन मैं प्रेजेंटेशन में शामिल है, जो मैंने प्रेजेंटेशन खुल जाए तो शायद आपके सामने आ जाए। इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, बुनियाद इस्लाम वाला खमसिन, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। पहली चीज़ फरमाया अस्सलात व ज़कात, व सौम व हज, नमाज और ज़कात और रोज़े और हज। पूछा गया कि वल वलाया और विलायत, पूछा गया कि अय्युहुम अफ़ज़ल, ये जो 5 चीज़ें आपने फरमाई हैं इसमें से भी सबसे ज़्यादा फजीलत वाली चीज़ क्या है? फरमाया अल वलाया, सबसे फजीलत वाली चीज़ जो है वह है विलायत। तो इस किस्म के जो हदीसें हैं उससे ज़ाहिर होती है कि मकतब तशय्यों में विलायत को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। आप इस मकतब को, मकतब तशय्यों को मकतब विलायत भी कह सकते हैं, इतनी अहमियत हासिल है इस मकतब में। दूसरी तरफ है फकीह। फकीह किसको कहते हैं? फकीह उसको कहते हैं जो बज़ाहिर इल्म फ़िक्ह का माहिर होता है, और फ़िक्ह का मतलब है अंडरस्टैंडिंग, समझ बूझ, समझ को कहते हैं। अगर कहा जाए रजुलुन फ़कीहुन, कि ये आदमी फकीह है, इसका मतलब ये है कि बहुत समझदार है। लेकिन ये लफ्ज़ कुरान करीम में भी इस्तेमाल हुआ है, एक जगह सूरह तौबा की आयत नंबर है 122, जिसमें कहा गया मा काना लिल मुमिनीन लयनफिरु काफा, मुमिनीन के लिए मुनासिब नहीं है के सब निकल खड़े हों। फलाउला नफरा मिन कुल्ले फिरकते मिन हम ताइफा, बस ये लोग ऐसा क्यों नहीं करते कि हर ग्रोह से कुछ अफराद निकलें और एक ताइफा यानी एक ग्रुप बनाएं, ले यतफक्कहु फिर दीन, ताकि वो दीन में समझ बूझ हासिल करें। बोले यूनज़िरु क़ौमहुम इज़ा रजऊ इलैहिम, और फिर वापस पलट कर आएँ अपनी कौम की तरफ और उन्हें खुदा का खौफ दिलाएं। लअल्लहुम यहज़रून, शायद इस तरह उनके दिल में खौफ खुदा आ जाए। तो ये आयत ये बता रही है कि असल में मोमिनीन के लिए मुनासिब नहीं है कि किसी भी काम में सबके सब लोग निकल खड़े हों। मिसाल के तौर पर सबके सब लोग डॉक्टर बनने की कोशिश करें, सबके सब लोग इंजीनियर बनने की कोशिश करें, सबके सब लोग वकील बनने की कोशिश करें, या सबके सब लोग आलिम दीन बनने की कोशिश करें। बल्कि माशरे में होता ही है कि कुछ लोग डॉक्टर बनते हैं बाकी लोग उसके इल्म से फ़ायदा उठाते हैं, कुछ इंजीनियर बनते हैं बाकी लोग उनके इल्म से फ़ायदा उठाते हैं, कुछ वकील बनते हैं बाकी लोग उनके इल्म से फ़ायदा उठाते हैं, कुछ असातिज़ा बनते हैं बाकी उनके इल्म से फ़ायदा उठाते हैं। बेआईने ही कुछ ऐसे होते हैं जो आलिम दीन बनते हैं और बाकी लोगों को चाहिए कि वो उनके इल्म से फायदा उठाएं। देखिए दीन की जो अंडरस्टैंडिंग है, दीन की जो समझ है, उसके दो लेवल्स हैं। एक वो है जो एवरेज लेवल है और जिस अंडरस्टैंडिंग की हर शख्स को ज़रूरत है, और एक वो है जो एक्सपर्टीज लेवल है, महारत वाला लेवल है। और ये वो लेवल है जिसमें हर शख्स जाहिर है कि फायज नहीं हो सकता, ये वो लेवल है जिसमें हर शख्स नहीं फायज हो सकता। बस इस लेवल के अंदर ज़रूरी है कि कुछ लोग हों जो माहिर हों और बाकी लोग जो हैं वो उनकी महारत से फायदा उठाएं। इतनी फाइलें हैं कि वो मेरी वाली फाइल इसमें खो गई। यूएसबी से खोल, ठीक है, हाँ ठीक है। नहीं मैं चाह रहा था हार्ड कॉपी करके खोलूँ डेस्कटॉप पर, इसी से खोल लेते हैं, नो प्रॉब्लम। चलो बात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि फ़कीह वो शख्स है कि जो दीन में महारत रखता है, दीन के समझ बूझ के उस लेवल पे है जिसको महारत का लेवल कहते हैं। और विलायत फ़कीह का मतलब ये है कि ये जो मैंने आपके सामने विलायत का तस्वुर पेश किया, खुदा की विलायत, रसूल की विलायत, आइम्मा ताहिरीन की विलायत, उसमें इमामों की जो तादाद है वो फिक्स है। वो इमाम जो इमाम मंसूस मिनल्लाह और मासूम अनिल ख़ता है, और वह है 12 और 12वें का नाम इमाम महदी अजल्लाहु फरजहु शरीफ है। बस आइम्मा ताहिरीन की तादाद तो फिक्स है अहादीस के मुताबिक। अब जबकि हम जमाने गैबत इमाम में जिंदगी गुजार रहे हैं, तो जमाने गैबत इमाम में हमारा सरपरस्त कौन है? जिस तरह पैगंबर के ज़माने में एक इस्लामी माशरे की सरपरस्ती अल्लाह के रसूल के हाथ में थी, अमीरुल मोमिनीन के ज़माने में उनके हाथ में थी, दीगर आइम्मा ताहिरीन खा उनके पास हुकूमत और इख्तदार न भी हो, लेकिन शियों की क़यादत और रहबरीत किसके हाथ में थी? इमाम मासूम के हाथ में थी। खा इमाम क़ैद में हो, लेकिन शियों की क़यादत और रहबरीत इमाम के हाथ में थी। तो दौर हाजिर में जबकि हम ज़माने गैबत इमाम में हैं, तो शियों की क़यादत, रहबरीत, सियासी और इज्तमाही मामलात किसके हाथ में? नज़रिया विलायत फ़कीह, ख़ास तौर पर जो इमाम ख़ुमैनी रिज़वानुल्लाह अलैह की इंटरप्रिटेशन है, उसके मुताबिक ज़माने गैबत कुबरा में ये विलायत एक फ़कीह आदिल के हाथ में है। एक फ़कीह आदिल, इस फ़कीह आदिल का एक नहीं तीन स्टेटस है। एक स्टेटस इसका यह है कि ये मर्जाइयत रखता है। मर्जाइयत यानी जिसकी तरफ रुजू किया जाता है, मर्जा यानी जिसकी तरफ रुजू किया जाता है, जिससे कंसल्टेंसी की जाती है, जिसको आप कहते हैं तकलीद और इज्तिहाद, कि एक मुज्तहिद है और बाकी लोग उसकी तकलीद कर रहे हैं। तो ये जो तकलीद और इज्तिहाद का निज़ाम है, ये ज़माने गैबत में शुरू नहीं हुआ, बल्कि ज़माने हुजूर इमाम में भी आइम्मा ताहिरीन के हुक्म से लोग जाते थे और फकीह से, जिसको आज हम मुश्तहिद कहते हैं, मुश्तहिद से रुजू करते थे और उनसे जाके अहकाम लिया करते थे। जमाने हुजूर इमाम में, यानी इस हवाले से एक नहीं बहुत सारी हदीसें आपको मिल जाएंगी जो कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के जमाने की है। तो वो मैं भी आपको डिस्प्ले करूंगा उसमें से एक आध, जिससे आपको अंदाजा होगा कि ये जो एक मुश्तहिद या एक फकीर जिसको हम कहते हैं, उससे जाके दीन के अहकाम को लेना, ये सिलसिला जमाने गैबत में शुरू नहीं हुआ, ये जमाने हुजूर इमाम में भी था। दूसरा मामला है कजावत का, इख्तलाफी मामलात में फैसले करना, ये भी वो काम है जो जमाने हुजूर इमाम में भी आइमा तहरीर के हुक्म से एक फकीह अंजाम दिया करते थे और लोगों को कहा गया था कि अपने इख्तलाफी मामलात को सरकारी काजियों के पास ले जाने के बजाय जो तुम में से हलाल और हराम से वाकिफ हैं, और जाहिर है एक फकीह सबसे ज्यादा हलाल और हराम से वाकिफ होता है, उससे जाके अपने फैसले करवाओ और उनके फैसले पर राजी हो जाओ। तो मरजईयत और कदावत, ये दो उमूर वो हैं जो जमाने हुजूर इमाम में भी एक फकीह आदिल के हाथ में थे, आइमा तहरीन की मर्जी से, उनकी इजाजत से, बल्कि उनकी रिकमेंडेशन से। मामला आता है तीसरे का, और तीसरी चीज है रहबरियत, यानी माशरे की क़यादत और रहबरियत। अभी मैंने आपके सामने अर्ज किया कि जहां तक माशरे की क़यादत और रहबरियत और सियासी और इज्तमाही मामलात हैं, वो आइमा तहरीन के हाथ में थे, जमाने हुजूर इमाम में उन्होंने इसको कभी भी डिसेंट्रलाइज नहीं किया, हमेशा उन्हीं के हाथ में रहा, खा इमाम कैद में भी हों लेकिन इज्तमाही मामलात में उन्हीं से रजू किया जाएगा और आखिरी फैसला वही करेंगे। जब जमाने गैबत का आगाज हुआ, गैबत कुबरा का खास तौर पर, तो उस वक्त शियों को यह तशवीश हुई कि अब हमारी क़यादत और रहबरियत का क्या होगा। देखिए, मरजईयत और कजावत के अंदर पहले भी उलमा से रजू कर रहे थे, बाद में भी कर रहे हैं, ये कोई नई चीज़ तो थी नहीं, इसमें तो ऑलरेडी शिया जो थे वो प्रैक्टिस में थे कि इससे पहले आइमा तारीन जो थे वो खुद नाम लिया करते थे, मोहम्मद इब्ने मुस्लिम से जाके अहकाम ले लिया करो। कूफे से एक शख्स आता है अब्दुल्ला इब्ने अबी आफूर, वसालु शिया की रवायत है, और छठे इमाम के पास आके कहता है, फरजंद रसूल मैं आपके पास बार बार नहीं आ सकता, मैं कूफे में रहता हूँ, आप मदीने में रहते हैं, बाज़ औक़ात शरई मसाइल की जरूरत पड़ती है तो क्या करें। आपने फरमाया मोहम्मद इब्ने मुस्लिम से जाके ले लिया करो, तुम्हारे इलाके में मोहम्मद इब्ने मुस्लिम रहता है और वो हमारा काबिल एतमाद है और हमारे मेरे वालिदे गिरामी के भी काबिल एतमाद है। अब ये मोहम्मद इब्ने मुस्लिम कौन है? मोहम्मद इब्ने मुस्लिम ना इमाम है ना मासूम है, लेकिन मोहम्मद इब्ने मुस्लिम, अबू बसीर, ज़ुरारा इब्ने आयून, ये वो लोग हैं कि एक एक शख्स बाज़ोका तीन चार मासूमीन से कस्ब फैज़ करने वाले हैं। इनको 30-30 हज़ार हदीसें मासूमीन अलैहिस्सलाम की याद होती थी, तो इनका वो स्टेटस बन गया कि इमाम मासूम खुद कह रहे हैं कि जाके उनसे अहकाम ले लिया करो। तो ये वो सिलसिला है जो हुजूर इमाम में जारी था। जमाने गैबत में जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ी, जिसकी वजह से इमाम ज़माना को ख़त लिखना पड़ा, वो ये है कि शियों की मरकजियत, शियों की इज्तमाहीत, शियों की क़यादत, रहबरियत, इसका क्या होगा। तो ये जो ज़माने गैबत में शियों की मरकजियत का निज़ाम है, ये भी आइमा तहरीन के इरशादात के मुताबिक, कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा, एक फकीह आदिल के पास। तो फकीह आदिल की सियासी विलायत, फकीह आदिल की सियासी विलायत को विलायत फकीह कहते हैं, सियासी विलायत को विलायत फकीह कहते हैं, फकत मरजईयत को नहीं कहते। मरजईयत के लिए कभी इस पर गौर कीजिएगा जाके बाद में, कि फकत मर्जियत के लिए किसी विलायत की जरूरत नहीं है असल। इस पर जरा गौर कीजिएगा, फकत मर्जियत के लिए किसी विलायत की जरूरत नहीं है। फर्ज करें कि आपको नमाज आती है और सही आती है, आप अपने बच्चों को नमाज सिखा सकते हैं, कोई रुकावट है इसमें? उसके लिए किसी खास अथॉरिटी की जरूरत है, उसके लिए किसी खास परमिशन की जरूरत है? नहीं है। आपको नमाज आती है, आप अपने बच्चों को नमाज सिखा दें। आपको वजू सही आता है, आप अपने बच्चों को वजू सिखा दें। अपने बच्चों को नहीं, मोहल्ले के बच्चों को भी सिखा सकते हैं आप। तो अहकाम शरईयत को बताने के लिए किसी विलायत की जरूरत नहीं है, गो कि हम उसके लिए भी ये कहते हैं कि एक फकीह के पास ये भी विलायत हासिल है कि विलायत कजाई और मर्जाए तकलीद होने वाली विलायत। लेकिन जिस चीज की जरूरत है माशरे को, एक तकवीनी विलायत के बहस भी है लेकिन अभी उसको छेड़ नहीं सकते, अगर छोड़ देंगे तो फिर वक्त आखिर में नहीं बचेगा। देखिए आयमा तारीन का अपने असहाब की तरफ वजू करने का हुक्म कई हदीसों के अंदर आया। एक जगह आपने फरमाया है इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने कि बशरिल मुखबतीन बिल जन्ना, बुरैर इब्न मुआविया अल अजली व अबू बसीर इब्न लैस अल बख्तरी अल मुरादी व मुहम्मद इब्न मुस्लिम व ज़ुरारा, कि इनको जन्नत की बशारत दो। इनको बुरैर इब्न मुआविया अल अजली, अबू बसीर, मुहम्मद इब्न मुस्लिम, ज़ुरारा इब्न आयुन, अरबातो नजबा व मनाउल्लाह अला हलालिही व हरामिह, ये चार वह हैं जो नौजबा हैं, जो शरीफ नफ्स लोग हैं और अल्लाह के हलाल और हराम के ये अमीन हैं। लौला उलाई इनकत आसार नबुवा, अगर ये लोग ना होते तो आसार नबुवत जाया होने का इम्कान था। इतनी मेहनत करके उन्होंने महफूज किया। कौन है ये लोग? मैंने अर्ज किया इमाम तो नहीं है, मासूम तो नहीं है, लेकिन मासूमीन अलैहिस्सलाम से कस्ब फैज करने की वजह से आज आइम्मा तारीन उनके बारे में ये फरमा रहे हैं कि हमारे आबा अजदाद का दीन इनकी वजह से जिंदा है। जहां तक तकलीद का ताल्लुक है तो तकलीद में हर शख्स को एक मुज्तहिद की शनाख्त खुद करनी होती है। मुज्तहिदीन एक वक्त में बहुत सारे होते हैं, मुज्तहिदीन तो असल में माहिर होते हैं। जिस तरह एक इंसान को फर्ज करेंगे दिल का ऑपरेशन करवाना है, शहर में मौजूद जितने डॉक्टर्स हैं उनमें से किस डॉक्टर के पास उसको जाना चाहिए, किससे अपना ऑपरेशन करवाना चाहिए, इसका तायुन वो खुद करता है और खुद तय करता है कि फलां डॉक्टर ज़्यादा तजुर्बाकार है, ज़्यादा साहिब इल्म है, ज़्यादा माहिर है, मैं उससे जाके अपना इलाज करवा लूँ। अब उसमें दो चीजें देखी जाती हैं, एक तो उसका इल्म देखा जाता है, एक तो इल्म कि डॉक्टर भी है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि डॉक्टर ही नहीं है, कंपाउंडर है और हम उसके पास चले गए ऑपरेशन करवाने के लिए, उसने खोल तो दिया फिर बंद नहीं कर पा रहा है। तो एक तो ये देखना जरूरी है कि उसका इल्म और तजुर्बा सही है या नहीं। दूसरी चीज ये भी देखना जरूरी है कि वो जो डॉक्टर है तो डॉक्टर प्रोफेशनल, लेकिन ईमानदार भी है या नहीं है। ऐसा ना हो अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाने के लिए गए और गुर्दा निकाल के भेज दिया उसने, ये भी हो रहा है इसी मुल्क के अंदर। तो फकत इल्म काफी नहीं है, इल्म के साथ साथ उसकी दयानतदारी भी जरूरी है। देखें यही बात इस हदीस के अंदर आई है। एक तो आप ये देखें, बहुत लंबी इबारत है, जाहिर है इतनी तो नजर भी नहीं आ रही होगी आपको, ना पढ़ी जाएगी, लेकिन ये लंबी इबारत मैंने लिख दी थी, यहाँ के लिए नहीं लिखी है। ये प्रेजेंटेशन में और भी कई जगहों पर दिखा चुका हूँ, ये मैंने इसलिए लिखी है कि इसमें से वो जो रेड हाइलाइटेड इबारत है ये आपकी सुनी सुनाई है, लेकिन ये पूरी हदीस जो है वो आम तौर पर बयान नहीं की जाती है, जिससे कुछ गलत फहमियाँ पैदा होती हैं, तो इसलिए मैंने ये पूरी लिख दी। ये हदीस वो है जो अल एहतजाज में तबरिसी ने लिखी है। अल एहतिजाज एक बहुत मारूफ किताब है और इस हदीस के जो रावी हैं वो इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम है। और ये तफसीर इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम में भी है। अच्छा, तफसीर इमाम अस्करी इमाम ने लिखी है, वो किसी और ने लिखी है, इमाम की तरफ मनसूब किया है, उस तफसीर में भी है। तो इसकी वजह से बाज़ लोगों को ये गलतफहमी है कि शायद ये ग्यारहवें इमाम का कौल है। और जब जहन में होता है ग्यारहवें इमाम का कौल है तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ज़माने गैबत में होगी। हालांकि ऐसा नहीं है। ये पूरी हदीस में इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि ये असल में ग्यारहवें इमाम इसके रावी हैं और हदीस जो है वो छठे इमाम से है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये उस दौर में बात सामने आ चुकी थी जब छठे इमाम का दौर था। तो ये समझ लें कि इश्तिहार और तकलीर का निज़ाम ज़माने गैबत में शुरू नहीं हुआ है बल्कि ज़माने हुजूर इमाम में भी राइज था। और यहाँ इमाम फरमा रहे हैं छठे इमाम, फअम्मा मन कान मिन अल फुकहा साइन लि नफ्से हाफिज़न लि दीने मुखालिफन अला हवा मुतीअन लि अम्रिल मौला। चार खुसूसियात इमाम ने बयान फरमाई है उसके लिए जो एक फकीह है। फकीह होना एक टेक्निकल एस्पेक्ट है कि इल्म के एक खास मकाम पर वो फायज है जिसके लिए हम उसको कह रहे हैं फकीह, जैसे आप कहते हैं डॉक्टर, जैसे आप कहते हैं इंजीनियर। लेकिन हर फकीह की तकलीफ नहीं होगी। किसकी होगी? फअम्मा मन काना मिनल फुकहा, फुकहा बहुत सारे होंगे तुम्हारे दौर में, उनमें से भी तलाश करो। किसको? साइन लि नफ्से, जो अपने नफ्स को हराम से बचाने वाला हो, हाफिजन लि दीने, दीन की हिफाजत करने वाला हो, मुखालिफन अला हवा, अपनी ख्वाहिशात नफ्स की मुखालफत करने वाला हो, और मुती अल अमरिल मौला, अपने आका व मौला की अतात करने वाला हो। फकी होने का ताल्लुक इल्म से है और ये जो चार शराइत हैं इसका ताल्लुक तकवा और अमल से है। और क्या आपने फकी होने का ताल्लुक इल्म से है लेकिन दीगर जो चार शराइत हैं उनका ताल्लुक तकवा और परहेजगारी से है ना। तो एक फकी काफी नहीं है, ऐसा फकीह चाहिए जिसको इस्तेलाह में फकीह आदिल कहते हैं, जिसको फकीह आदिल कहते हैं। तो जो फकीह आदिल दस्तियाब हो तो इमाम फरमा रहे हैं फलिल अवाम अन युकल्लिदू, अवाम को चाहिए उसकी तकलीद करें। युकल्लिदू, बस अवाम को चाहिए कि वो उसकी तकलीद करें। ये लफ्ज़ तकलीद कलाम मासूम के अंदर आया है। जो लोग तकलीद के मुखालिफ हैं, बहुत से लोग शियों में तकलीद के मुखालिफ हैं, मुखालफत करते हैं तकलीद की, वो न सिर्फ ये कि मुखालिफ हैं बल्कि तकलीद का मजाक उड़ाते हैं। कभी वो कहते हैं कि जी ये तकलीद का जो लफ्ज़ है ये तो कल्लादा युकल्लिदु तकलीदन, और कल्लादा जो है वो कलादा से निकला है। कलादा किसको कहते हैं? कलादा कहते हैं गले में डालने वाली चीज़ को, जिसको आम जुबान में लोग कलावा कह देते हैं। कलावा लोग कहते हैं मुहर्रम में कलावा डाल लेते हैं। इसे कलावा कोई लफ्ज़ नहीं है, असल में है कलादा। कलादा वो चीज़ है जो गले में डाल ली जाती है। अब जो तकलीद के मुखालिफ हैं वो ये कहते हैं कि क्या आप पसंद करते हैं कि आपके गले में एक कलादा डाल दिया जाए? आप जानते हैं गले में पट्टा किसको डाला जाता है और उसका कंट्रोल किसी और के हाथ में दे दिया जाए। तो लफ्ज़ तकलीद का मतलब, लेकिन लफ्ज़ी मतलब हर जगह इस्तेमाल नहीं होता। ये पूरी बहस है अल्फाज की बहस कि हर जगह हम अल्फाज से नहीं खेलते बल्कि इस्तेलाह होती है, उस इस्तेलाह का कुछ माना होता है। और अगर किसी को लफ्ज़ तकलीद का यही माना पसंद आ रहा है कि इस कलादा या गले में डालने वाला पट्टा, तो इमाम ने कहा ना फलिल अवाम अन युकल्लिदू, अवाम को चाहिए कि वो गले में पट्टा डाल लें। इमाम ने कहा ना डालने के लिए। अगर आप समझते हैं इसका मतलब पट्टा ही है, हालांकि इसका मतलब पट्टा नहीं होता, दोबारा बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि इसका यही माना है तो इमाम कह रहे हैं ना डालने के लिए, तो डाल लो। आप अपने गले में वो चीज़ भी तो डालते हैं ना जो इमाम ने नहीं कहा है। ये बात जरा सख्त है लेकिन सुन लें आप, यहाँ असगरिया के कन्वेंशन में सुनेंगे तो और कहाँ सुनेंगे। अगर आप जो अपने गले में डालते हैं मुहर्रम में, तो वो किसने कहा? इमाम ने कहा डालो, इमाम ने कहा गले में ये डालो, इमाम ने तो नहीं कहा। आप कहते हैं हम उनकी मोहब्बत में डाल लेते हैं, इमाम के गले में तौक पहनाया गया हम उसकी मोहब्बत में, तो इमाम ने तो नहीं कहा ना, इमाम ने बाद में कभी पहना। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने रिहाई के बाद 34 साल तक जिंदा रहे, हर साल मुहर्रम का चांद नजर आते ही गले में डालते थे, कि चूंकि मुहर्रम का चांद नजर आ गया, सन 61 हिजरी में मेरे गले में तौक डाला गया था, अब मैं इस साल फिर दोबारा उसी की याद बनाने के लिए चांदी का लोहे का धागे का। तो इमाम ने तो नहीं डाला, ना किसी और इमाम ने डाला, ना इमाम ने कहा कि अपने गले में डालो। अब आप अपने उनसे अकीदत में मोहब्बत में डाल लेते हैं, मैं उस बहस में नहीं पड़ रहा कि सही है या गलत, लेकिन जो जो इमाम ने नहीं कहा वो भी आप उनकी मोहब्बत में डाल रहे हैं। यहाँ तो इमाम फरमा रहे हैं फलिल अवाम युकल्लिदू, अवाम को चाहिए कि वो तकलीद करें। बाज़ लोग जो हैं वो हदीस की किताबें छाप के और वो डिस्काउंट रेट में बेच रहे हैं। शेख सदूक अलैहि रहमा की एक किताब है मल्ला यहज़रुहुल फ़कीह, मल्ला यहज़रुहुल फ़कीह, इसका मतलब होता है जहां फ़कीह अवेलेबल ना हो, जहां फ़कीह हाजिर ना हो, वहां क्या करें, वहां इस किताब को पढ़ लें। 4 जिल्दों की ये किताब है, कुछ लोगों ने उसका उर्दू तर्जमा करवाया, कुछ उसमें अपनी तरफ से काट पीट भी कर दी, कुछ चीज़ें निकाल दी, और उसके बाद वो कह रहे हैं कि ये मसलन 1000 रुपए का एक सेट ले लें आप, और मुज्तहिद के पट्टे को अपने गले से उतार के फेंक दें 1000 रुपए में सिर्फ। शायद अब रेट बढ़ गया हो, शुरू में तो 1000 था। एक किताब मैं आपको और बताऊं, वो हमारी कराची यूनिवर्सिटी के प्रेस ने छापी है और उसकी कीमत थी 300 रुपए सिर्फ। उस किताब का नाम है जहां डॉक्टर ना हो, एक इंग्लिश किताब का तर्जुमा है, उसका नाम है जहां डॉक्टर ना हो। अब आप ऐसा करें कि 300 रुपए की वो किताब खरीद लें और डॉक्टर का पट्टा अपने गले से उतार के फेंक दें, तो सारे क्लिनिक वीरान हो जाने चाहिए, सारे हॉस्पिटल बंद हो जाने चाहिए, क्योंकि वो किताब आ गई मार्केट में जहां डॉक्टर ना हो। लेकिन हर अकलमंद आदमी समझता है कि इस किताब को लिखने का मकसद ये नहीं है, इसको लिखने का मकसद ये है कि अगर इंसान किसी ऐसी जगह पर फंस जाए कि जहां बीमार हो जाए और डॉक्टर दस्तियाब ना हो, तो हसरत और आरजू के साथ मरने से बेहतर है इस किताब को खोल के कुछ तजुर्बा कर ले, क्या पता काम आ जाए। लेकिन अगर कोई इंसान बीमार हो और डॉक्टर दस्तियाब हो, तो अकलमंदी का तकाजा है डॉक्टर से रुजू करें, डॉक्टर की तकलीद करें। अकलमंदी का तकाजा ये है कि आप डॉक्टर से रुजू करें, डॉक्टर की तकलीद करें। तो शेख सदूक ने यह किताब इसलिए नहीं लिखी, शेख सदूक ने किसी और मकसद के लिए लिखी। तो लफ्ज तकलीद जो है वो कौल मासूम में आ गया है, चूंकि इसलिए इस लफ्ज का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और अगर कोई चाहता है वाकई अपने गले से तकलीद के पट्टे को उतार के फेंक दे, उसका हल मौजूद है, इसी हदीस में मौजूद है, आप देखें इन्हीं अल्फाज में। अगर कोई चाहता है अपने गले से ये पट्टा उतार के फेंक दे, वेरी इजी, फलिल अवाम अय्युकल्लिदू, अवाम को चाहिए कि वो तकलीद करें। आप अवाम से बाहर निकल जाएं, आप खवास बन जाएं, तकलीद खत्म, ठीक है ना। अगर आप अवाम हैं, अवाम के लिए हुक्म है ना, अगर आप अवाम हैं, अगर आप फर्ज करें आम आदमी हैं और डॉक्टर नहीं हैं आप, तो आपको क्या करना चाहिए? डॉक्टर से जो करना चाहिए। अगर आप आम आदमी भी हैं, डॉक्टर भी नहीं हैं, बीमार भी हैं, और आप ये भी कहते हैं मैं डॉक्टर से रुजू भी नहीं करूंगा, तो फिर अपने स्वयं चलूं वगैरह की तैयारी कर लें पहले से। तो अगर आप चाहते हैं कि बाहर निकल आए इस तकलीद के चक्कर से, तो उसका एक ही हल है, और वह हल ये है कि आप आवाम से अपने आप को बाहर निकल दें, आप खुद मुज्तहिद बन जाएं, आप खुद फकीह बन जाएं। जब आप खुद फकीह बन जाएंगे तो तकलीफ खत्म हो जाएगी फिर आप पर। आप खुद डॉक्टर बन जाएं, डॉक्टर का पट्टा उतार फेंकें। लेकिन ये जो तकलीद है ये हर एक की नहीं होगी, उसके लिए मुज्तहिद होना काफी नहीं है। बहुत से लोग मुश्तहिद बहुत है दुनिया में और तरह तरह के मुश्तहिदीन हैं। हमारे मुल्क में भी कुछ मुश्तहिदीन का आजकल कुछ ग्रोथ शुरू हो गई है थोड़ी सी, और बहुत सारे लोगों के नाम के साथ मुश्तहिद, किसी के साथ आयतुल्ला, किसी के साथ मुख्तलिफ चीज़ें अब शुरू हो गया है एक सिलसिला। कराची में तो बहुत सारे लोग इस तरह आते भी हैं। तो एक साहब ने मुझसे पूछा किसी का नाम लेके, फलां साहब आयतुल्ला हैं। मैंने कहा होंगे इंशाल्लाह, जब कहेंगे नहीं, लोग उनके साथ लिख रहे हैं आयतुल्ला, कह रहे हैं आयतुल्ला। तो मैंने कहा देखिए कराची वाले बड़े फराग दिल हैं, वो तो रिक्शे के पीछे F-16 लिख देते हैं। तो रिक्शे के पीछे F-16 लिख देने से रिक्शा F-16 तो नहीं हो जाता, रिक्शा रिक्शा रहता है, F-16 रहती है। हाँ अलबत्ता कुछ लोगों को ये गलतफहमी ज़रूर होती है, जिन लोगों ने कभी F-16 नहीं देखी है उनको भी पता है कि ये रिक्शा है, F-16 नहीं है। लेकिन उनको ये गलतफहमी होती है कि F-16 भी इसी टाइप का होता होगा, थोड़ा इससे बड़ा होता होगा। तो जिन लोगों ने मुश्तहिदीन को नहीं देखा है उनको गलतफहमी होती है कि वो भी ऐसे ही होते होंगे, ये 5 मीटर के लपेटे हुए, वो 7 मीटर के लपेटते होंगे। तो इस किस्म की गलत फहमियाँ तो हो सकती हैं, कोई हर्ज नहीं है अगर मुश्तहिदीन बहुत सारे एक दौर में हों, अच्छी बात है। लेकिन तकलीर हर एक की नहीं होगी, तकलीर तो उनकी होगी जो फकीह होने के साथ साथ बाकी शरायत भी पूरी कर लेगा। और ख़ुद इमाम ने इस कौल में फरमा दिया है वज़ालिका ला यकून इल्ला बाद फुकहा शिया ला कुल्लुहुम। इमाम ने फरमा दिया कि ये जो शरायत हैं ये बाज फुकहा शिया फुलफिल कर रहे हैं, सब नहीं करते, सब इस क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरते, बाज हैं जो पूरे उतर रहे हैं। अब तुम्हें उनकी शनाख्त करनी होगी, तुम्हें उनकी तलाश करना पड़ेगा। और दूसरी हदीस जो इमाम जमाना अजल्लाहु फरजहु शरीफ की तौकी शरीफ के अंदर आई है, वो खज इमाम को लिखा गया, उसके जवाब आया, उसको तौकी कहते हैं। तो एक जवाब में इमाम ने फरमाया कि वो अमर हवादिसुल वाकिया फर्ज उफिया इला रुवात हदीसना, कि जो हवादिसुल वाकिया पेश आए, बाद लोग इस हदीस को बयान करते हैं कि जो शरई मसाइल पेश आए, शरई मसाइल में एक फकीह की तरफ रुजू करना है, ये बात पहले से तय थी, इसके लिए इमाम जमाना को खत लिखने की जरूरत नहीं थी। वो चीज़ जो यहाँ पूछी जा रही है इमाम से वो ये है कि जो हवादिसुल वाकया पेश आए, जो डे टू डे मटेरियल पेश आए, डे टू डे मैटर्स, डे टू डे अफेयर, आज कुछ है कल कुछ है परसों कुछ है। देखिए एक एक मुश्तहिद की आप तकलीफ करते हैं, उस मुश्तहिद का एक पैकेज आपको तैयार मिल जाता है तौजुल मसाइल के नाम से, या कोई भी फिक्र की किताब अहकाम की किताब मुश्तहिद लिखते हैं ताकि उनके उनकी तकलीर करने वालों को आसानी हो जाए। ये पूरा पैकेज है, ये हवादिसुल वाकया नहीं है, ये हवादिसुल वाकया नहीं। हवादिसुल वाकया क्या है? हवादिसुल वाकया ये है कि आज आप देख रहे हैं कि एकदम आले सऊद की पॉलिसी ये आ गई, एकदम देख रहे हैं कि अमेरिका ये चाह रहा है, एकदम देख रहे हैं आप इसराइल ये चाहता है। रोजाना एक नया फितना, रोजाना एक नई कहानी, रोजाना एक नई साजिश तैयार होती है। तो ये जो डे टू डे अफेयर्स हमारे सामने आते हैं इसमें डे टू डे इंस्ट्रक्शंस की हिदायत की जरूरत पेश आती है, और उस डे टू डे हिदायत के लिए चाहिए एक लीडर, एक रहबर, एक रहनुमा जो आपको बिल्कुल हालात पर, दुनिया भर के हालात पर, उम्मत के हालात पर, मिल्लत के हालात पर गहरी नजर रखे और फौरन हिदायत फराहम करे, फौरन आपके सामने वो हिदायत आ जाए। जैसे अभी मुझसे पहले आप देख रहे थे एक प्रेजेंटेशन के जो दुनिया में हालात और वाकयात पेश आ रहे हैं, किस किस तरीके से उम्मत मुस्लिमा पर अलगार किया जा रहा है, किस किस तरीके से इस्लाम और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, किस तरह तरह हमारे जवानों को फहाशी उरियानी बेहयाई में धकेला जा रहा है, किस तरह कल्चरल इन्वेजन सकाफती अलगार है जो हर तरफ से आ रही है, तो उसका मुकाबला करने के लिए ज़रूरी है कि एक ऐसी सियासी दीनी बाबसीरत क़यादत हो जो हमारी निगाहों तक नहीं पहुंचती, हम उसको उसके उस फितने की हकीकत को नहीं समझ पाते, हम उसकी शिद्दत को नहीं महसूस कर पाते, लेकिन वो जो एक बाबसीरत क़यादत होती है वो उसकी शिद्दत को महसूस करती है और फिर वो अपने फॉलोवर्स को वेल इन टाइम इन्फॉर्म करते हैं, उसको सही हिदायत देते हैं। जो लोग उससे वाबिस्ता होते हैं वो उससे महफूज रहते हैं। इस तरह के एक उम्मत और इमाम के दरमियान राबता, फॉलोवर और लीडर के दरमियान एक राबता, यह है हवादिसुल वाकिया। इस हवादिसुल वाकिया में उससे रजू करो जो हमारी रिवायत को बयान करने वाले हों। रिवायत का मतलब वो रावी नहीं है जो खाला फला और अनफला है, बल्कि इससे मुराद वो है जो उनके पॉइंट ऑफ व्यू को बयान करते हैं, जो अहले बैत अथार का पॉइंट ऑफ व्यू, जो दीन इस्लाम का सही पॉइंट ऑफ व्यू है, उनकी तरफ रजू करो। फइन्नहुम हुज्जति अलैकुम, वो हमारी तरफ से तुम पर हुज्जत है। वह अना हुज्जतुल्लाह, और हम अल्लाह की हुज्जत है। वो हुज्जतुल्लाह नहीं है, हुज्जतुल्लाह हम है, अल्लाह की हुज्जत हम है, अल्लाह की हुज्जत इमाम मासूम है, और वो जो फकीह है वो इमाम की तरफ से हम पर हुज्जत है, इसलिए उसको हम नायब इमाम भी कहते हैं, क्योंकि वो इमाम की नियाबत कर रहा है ना जमाने गैबत में, इसलिए हम उसको नायब इमाम भी कहते हैं। वो इमाम की तरफ से हम पर हुज्जत है और खुदा की तरफ से इमाम हुज्जत है। इसलिए इमाम खुमैनी ने फरमाया कि इस दौर में फुकहाए इस्लाम अवाम पर हुज्जत है, फुकहाए इस्लाम हुज्जत है अवाम के ऊपर। क्या फकीह के पास हुकूमत भी होनी चाहिए? इमाम खुमैनी फरमाते हैं कि जो विलायत हदीस गदीर में बयान हुई है उसका मतलब फकत मानवी मकाम नहीं बल्कि हुकूमत है। देखिए, पैगंबर ने गदीर के मौके पर जो विलायत बयान की, आपको पता है बहुत से लोग ऐसे हैं जो शिया नहीं है लेकिन उनके यहाँ विलायत के तसव्वुर है, जैसे सूफियों के यहाँ, सूफियों के जितने भी गुरु हैं, कादरिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया, सोहरावर्दिया, ये सब विलायत के कायल हैं। और एक किताब है डॉक्टर ताहिरुल कादरी की जिसका नाम है अल सैफुल जली ले मुनकरे विलायत अली, कि अली की विलायत के मुनकरों के लिए एक नंगी तलवार, उस पर उन्होंने हदीस गदीर, हदीस विलायत और हदीस सकलैन और ये सब चीज़ें एक जगह जमा कर दी हैं। ज़्यादा मोटी किताब नहीं है, किताब उर्दू में ही है, नाम उसके अरबी में है, तो पतली सी किताब है। हमारे उलमा ने तो बहुत बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं, अल्लामा अमीनी की अल गदीर फिल किताब व सुन्नत वल अदब, अगर आप वो देख लें और उसके सामने ताहिरुल कादरी साहब की किताब देख लें तो ऐसे है जैसे बिरयानी के देख के मुकाबले में रायते की कटोरी। तो लेकिन रायता होता बहुत टेस्टी है, पता है आपको, इसलिए ताहिरुल कादरी साहब की जो किताब है वो बहुत टेस्टी है, छोटी सी किताब है जो, और उन्होंने लिखी है, अपनी किताबों के हवाले से लिखा है, इससे ज़रा मज़ा आता है हमें पढ़ने में। लेकिन किताब को बाद में पढ़ें, पहले उसके मुकदमे में देखें। उसके मुकदमे में वो लिखते हैं कि अली अलैहिस्सलाम पैगंबर अकरम के खलीफा है, बिला फसल है। बात ही ख़त्म हो गई, अब क्या बच गया? अली पैगंबर के खलीफा है, बिला फसल हैं, यहीं पर रुक जाते तो बात ख़त्म हो जाती, नहीं थोड़े से और आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं लेकिन कौन से खलीफा है बिला फसल? अब हमारे भी कान खड़े होते हैं, कच्चा कुछ और बात भी आगे। फिर कहते हैं कि पैगंबर के खलीफा बिला फसल रूहानी, और फलां साहब जो थे वो खलीफा बिला फसल सियासी थे, और फलां 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 साहब कराम जो हैं वो खलीफा बिला फसल इल्मी थे। ये खलीफा बिला फसल सियासी अलग है, खलीफा बिला फसल रूहानी अलग है, और खलीफा बिला फसल इल्मी अलग है। तो मैं ये कहता हूं, डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने अपनी किताब में लिख के ये बताया कि खलीफा बिला फसल नहीं बल्कि खुलफाए बिला फसल की एक पूरी फसल है, उनमें हर शख्स खलीफा बिला फसल है। तो आपने ये जो विलायत का जो तसव्वुर है, जो हमारा तसव्वुर है, उसकी आपने रूह निकाल दी, और उसके बाद आप हदीस गदीर को भी मानते हैं, हदीस मंजिलत को भी मानते हैं, हदीस सकलैन को भी मानते हैं, हदीस तैयार को भी मानते हैं, सब मानते हैं आप, कुछ भी मान लें आप, रूह तो आपने निकाल दी उसकी। तो जो हमारा तसव्वुर विलायत है उसके मुताबिक जब पैगंबर ने फरमाया मन कुंत मौला हो फहाजा अली मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका ये अली मौला है, उससे पहले आपने मजमे से इकरार लिया का अलस्तु औला बिकुम मिन अनफुसिकुम, क्या मैं तुम्हारे नफ्सों पर तुमसे ज्यादा इख्तियार तुमसे ज्यादा अथॉरिटी नहीं रखता। लोगों ने कहा बला या रसूलल्लाह, बेशक आप रखते हैं, क्योंकि कुरान की आयत है अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनीन पर उनके अपने नफ्सों से ज्यादा इख्तियार रखता है, उनकी अपनी जान से ज्यादा, अपने माल से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा। तो सहाबा ने कहा भला या रसूलल्लाह, बेशक आप रखते हैं। जब ये इकरार ले लिया पैगंबर ने तो फिर फरमाया मन कुंतु मौलाहु फहाज़ा अलीउन मौला, कि देखो वो इख्तियार वो अथॉरिटी जो मैं रखता हूं वही अली रखता है। अब आपको लफ्ज़ मौला के लिए डिक्शनरी में जाके ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये देखें पैगंबर ने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा। तो वो इख्तियार जो पैगंबर को हासिल था वो क्या था कि आप इस उम्मत के हादी हैं, रहबर हैं, पेशवा हैं, इमाम हैं, लीडर हैं, सियासी लीडर, रूहानी लीडर, सब वही है ना। ऐसा तो नहीं है कि पैगंबर के जमाने में सियासी लीडर और है, रूहानी लीडर और है, इल्मी लीडर और है, सब आप खुद हैं। बस जिस तरह आपके पास ये सारे इख्तियारात हैं, सारी विलायतें आपके पास है, विलायत सियासी भी आपके पास है, रूहानी भी आपके पास है, तशरी भी आपके पास है, तकबीरी भी आपके पास है, बेआईन ही वही विलायत अली को हासिल। तो उस पे हुकूमत और सियासत शामिल है या नहीं है ना। इस्लामी माशरे का लीडर कौन है? पैगंबर है। तो वो जो गदीर में ऐलान हुआ है विलायत का, इमाम खानी फरमाते हैं सिर्फ मानवी मकाम नहीं है बल्कि उसके अंदर हुकूमत भी शामिल है। और इमाम खानी फरमाते हैं इस्लामी हुकूमत लोगों पर इलाही कानून की हुकूमत है, इस्लामी हुकूमत मौलवियों की हुकूमत नहीं है। बाद लोग समझते हैं निज़ाम विलायत फकीह किसी मुल्ला क्रेसी का नाम है, थियोक्रेसी का नाम है, नहीं थियोक्रेसी और मुल्ला क्रेसी नहीं है बल्कि इस्लामी हुकूमत कानून की हुकूमत है, वो कानून जो खुदा का बनाया हुआ कानून है और उस कानून के पाबंद सब हैं, सिर्फ अवाम नहीं है, हुक्मरान भी पाबंद है, खुद जो वली फकीह होगा वो ज़्यादा पाबंद होगा। आम लोग फकत वाजिब नमाजें पढ़ते थे लेकिन पैगंबर अकरम के ऊपर नमाज शब भी वाजिब थी, आम लोगों से ज्यादा इबादत किया करते थे, आम लोगों से ज्यादा रोजे रखते थे, आम लोगों से ज्यादा आजमाइशों से आप गुजरे। बस एक इस्लामी हुकूमत जो है वो कानून की बालादस्ती का नाम है, वो कानून जो इलाही कवानीन है जिसके पाबंद सब लोग हैं इंक्लूडिंग फकीह आदिल इंक्लूडिंग वली फकीह। अब हम हुकूमत के अहमियत पर बात नहीं करना चाहते, एक नुक्ता से बयान करना चाह रहे हैं, वक्त ही रहा। देखें हुकूमत का मुखालिफ कौन लोग रहे हैं, तारीख उठा के देखें फकत खवारिज हैं जो हुकूमत के मुखालिफ हैं, जिन्होंने ये कहा कि इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, के हाकमियत फैसला करना, कजावत करना, हुकूमत करना ये किसी का हक नहीं है सिवाय अल्लाह के। अच्छा ये कुरान की आयत है इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, जब अमीर अल-मोमिनीन के इल्म में ये बात आई कि खवारिज का नारा ये है ला हुक्मा इल्ला लिल्लाह, तो आपने इरशाद फरमाया खुतबा नजल बलागा का है जिसमें फरमाया कि कलिमा तो हक्कुन युरादु बिहल बातिल, ये कलिमा तो हक है लेकिन जो मतलब ये निकाल रहे हैं वो बातिल है। फरमाया ला बुद्द मिन अमीरिन बिर्रिन औ फाजिरिन, हर माशरे में एक लीडर होना जरूरी है चाहे वो लीडर नेक हो या बुरा। अगर कोई सोसाइटी हेडलेस हो, उसका कोई लीडर ना हो, तो उसको ज्यादा नुकसान पहुंचेगा उस सोसाइटी के मुकाबले में जिसमें एक लीडर हो लेकिन करप्ट लीडर हो। तो लीडरशिप जरूरी है, आज आलम इस्लाम में आप देखें तो लीडरशिप नहीं है। हम कहते हैं उम्मत मुस्लिमा, भाई उम्मत, इस उम्मत का लीडर कौन है? नहीं लीडर कोई नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता फिर ये उम्मत कहां रही? फिर ये उम्मत नहीं है, ये रेवड़ है, ये उम्मत नहीं है। अगर आप 11 तालिबों को लेके 11 लड़कों को लेके कह देंगे ये टीम है, जैसे आप कहेंगे ये टीम है, कोई आपसे सवाल कह देगा भाई इस टीम का कैप्टन कौन है? आप कहेंगे कैप्टन कोई नहीं है, देखो ये बॉलर है, ये बैट्समैन है, ये विकेट कीपर है, ये फील्डर। आप कहें ठीक है, एक टीम ऐसी ही होती है, उसके अंदर कुछ बॉलर होते हैं, कुछ बैट्समैन होते हैं, एक विकेट कीपर होता है, लेकिन कैप्टन तो होगा ना, आप कह नहीं कैप्टन कोई नहीं, बस टीम है, पर टीम कहां से हो गई? अगर इमाम नहीं है तो फिर उम्मत कहां से हो गई? अगर उम्मत है तो इमाम जरूरी है, हर दौर में इमाम जरूरी है। वो जो 12 इमाम है, इमाम मासूम है, मंसूस मिन अल्लाह है, मासूम मिन अल खता है, लेकिन जमाने गैबत में भी एक इमाम होगा। इमाम यानी कायद, लीडर, उसकी लीडरशिप में यह उम्मत चलेगी। जो डे टू डे मामलात होंगे वो आपको पैकेज की सूरत में नहीं मिलेंगे, उसके लिए जरूरी है कि आपको उस रहबरियत और क्यादत जो है उससे वाबिस्ता रहना होगा, पेवस्ता रहना होगा, और डे टू डे इंस्ट्रक्शन वहां से लेनी पड़ेगी, डे टू डे हिदायत, और उसकी शनाख्त की जाती है। तकलीद की तरह नहीं है कि आप अपनी मर्जी से मुज्तहिद की शनाख्त करते हैं और उसकी तकलीद कर लेते हैं। बाज़ात मुज्तहिद के मसाइल फतावा पसंद नहीं आते, लोग तकलीद भी चेंज कर लेते हैं। 50 रियाल के लिए तकलीद चेंज करते हुए देखे हमने। हज में गए, कुर्बानी का मसला आया, एक मुज्तहिद कहता है कि यहाँ पे भी कुर्बानी हो सकती है, दूसरा कहता है नहीं यहाँ करो, वहाँ यहाँ कुर्बानी 400 रियाल में हो रही है, वहाँ कुर्बानी 450 रियाल में हो रही। 50 रियाल बचाने के लिए कहते हैं कुछ तकलीद चेंज कर लेते हैं, तो 50 रियाल बचाने के लिए लोग तकलीद चेंज कर देते हैं। क्यों? इसलिए कि तकलीद के लिए मुज्तहिद की शनाख्त आप खुद करते हैं, लेकिन रहबर को आप खुद नहीं बनाएंगे, बल्कि उसकी शनाख्त करनी पड़ेगी कि इस जमाने में इस उम्मत का रहबर कौन है। और जब उस रहबर की शनाख्त हो जाए तो फिर उससे जाके तजदीद अहद करना है। ये कहना है जैसे हम ज़ियारतों में जाके कहते हैं ना, इन्नमा माकुम ला मा अदुवकुम, मौला हम आपके साथ हैं, आपके दुश्मन के साथ नहीं है। ये क्या है? तजदीद अहद है ना। ये कहना जाकर के हम आपके साथ हैं और हम आपके मुखालिफिन के साथ नहीं है, आपके दुश्मनों के साथ नहीं है। तो वो जो फकीह आदिल होगा उसके अंदर कुछ सिफात और खुदूसियात चाहिए। सर फहरिस्त उसमें इल्म, कह रहे फकीह है तो इल्म चाहिए, इल्म के साथ साथ शुजात चाहिए, दिलेरी चाहिए, जो तागूत के सामने डट जाए। आज आप देखें आलम इस्लाम ने जो नाम निहाद लीडर्स पैदा किए, उनके अंदर शुजात नजर आ रही है कहीं पर? जिनको लीडर बनाया सब भागने वाले निकले, मुल्ला उमर गधे में बैठ के पहाड़ पे भाग गए, अबू बकर अभी देखें आप वो गायब हो गए सहरा में, सुना दाइश वाले। ना इनके पास इल्म है ना इनके पास शुजात है। अगर आप इनके इल्मी बैकग्राउंड को देखें तो एक ट्रक ड्राइवर निकलेगा, एक टिम्बर मर्चेंट निकलेगा, कोई कुछ और निकलेगा। इनकी उनके अपने मसलक में भी उनका कोई इल्मी मकाम नहीं है, ना उनके पास इल्म ना उनके पास शुजात है। सद्दाम को देखें किस तरह भागता हुआ पकड़ा गया, और जितने भी लीडर थे, मुकाबला किसी ने आज तक किया? किसी ने ताकूत की इस्तेमार की आंखों में आंखें डाल के कोई बात करता है? नहीं करता। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वो क़यादत और रहबरियत है जो ताकूत और इस्तेमार की आंखों में आंखें डाल के बात करती है। उसके अंदर ये जुरत है कि जब इनकलाब आया तो लोग हैरान थे कि किस तरह इमाम खुमैनी फरमा रहे हैं, ला शर्किया वला गर्बिया जमहूरिया इस्लामी, ना हम सोवियत ब्लॉक की तरफ जाएंगे ना हम अमेरिकन ब्लॉक की तरफ जाएंगे। लोग हैरान थे ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई रियासत अमेरिका और रूस के बगैर, एफिलिएशन के बगैर एग्जिस्ट कर सके। लेकिन वक्त ने साबित किया कि न सिर्फ यह कोई रियासत एग्जिस्ट किया उसने, बल्कि बेअकवा दुनिया की तमाम ताकती ताकतें उससे मुकाबला किया। और वक्त गुजरने के साथ साथ आज 40 साल हो रहे हैं, आप देखें मुसलसल तरक्की तरक्की हो रही है, मुसलसल आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इल्म, शुजात, बसीरत, दानाई, तकवा और परहेजगारी, तो ये वो बुनियादी चीजें हैं जिससे निज़ाम विलायत और विलायत फकीह का तायुन होता है। अब ज़ाहिर है इसकी बहुत सारी टेक्निकल बहसें हैं, उन सब में हम नहीं जा सकते। चंद सवालात हैं जो हम जल्दी जल्दी कर दें। अगर एक से ज़्यादा मुल्कों में इस्लामी निज़ाम नाफिज हो जाए तो क्या करें? देखिए उसूली तौर पर तो एक होगा वली फकीह, लेकिन चूंकि इस वक्त दुनिया सरहदों में तकसीम हो गई है इसलिए प्रैक्टिकली ऐसा कोई केस अभी तक सामने आया नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसा हो जाए दुनिया की किसी रियासत के अंदर अपनी रूह के मुताबिक एक इस्लामी माशरा, एक इस्लामी निज़ाम कायम हो जाए, उसको भी इस्लामी तस्लीम किया जाएगा। ये इस वक्त हालात की मजबूरी है। एक से ज़्यादा वाजिब शरायत फुका हों तो वली फकी कौन होगा? अगर एक से ज़्यादा ऐसे अफराद हों जिनके अंदर भरपूर सलाहियत मौजूद हो तो दीगर फुकाहा मिलकर ये देखेंगे, तलाश करेंगे कि इस वक्त उम्मत मुस्लिमा को, आलम इस्लाम को जिन मसाइल का सामना है उनको हल करने की सबसे ज़्यादा सलाहियत किसके अंदर है। फिर उनसे गुजारिश करेंगे कि जी आप ये जिम्मेदारी संभालें। क्या वली फकी का ईरानी होना ज़रूरी है? जी नहीं, वली फकी का ईरानी होना ज़रूरी नहीं, ना ईरान के कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि वली फकी का ईरानी होना ज़रूरी है। ईरान के सदर के लिए ईरानी होना ज़रूरी है, लेकिन वली फकी का ईरानी होना ज़रूरी नहीं है। क्या वली फकी का मर्ज तकलीद होना ज़रूरी है? ये भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मर्ज तकलीद में आप ये करते हैं कि उसकी तकलीद करते हैं जो आलम हो। आलम, आलिम की सुपरलेटिव डिग्री है, सबसे ज़्यादा इल्म रखने वाला। तो चूँकि वली फकी बनने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, ये मैनेजरियल स्किल ज़रूरी है, इसलिए मुमकिन है जो सबसे ज़्यादा इल्म रखने वाला हो उसके अंदर वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल ना हो। ये बिल्कुल इस तरह है जैसे एक यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनने के लिए क्या ज़रूरी है कि जो सीनियर मोस्ट प्रोफेसर हो वाइस चांसलर हो? ज़रूरी नहीं है। मुमकिन है कि एक सीनियर मोस्ट प्रोफेसर हो उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी ना हो, क्योंकि वाइस चांसलर तो वो बनेगा जिसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी हो। बस वली फकी होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो मर्ज तकलीद भी हो, कि लोग उसकी तकलीद भी करें। जो लोग उसको आलम समझेंगे वो तकलीद करेंगे, जो उनको आलम नहीं समझते किसी और को आलम समझते हैं वेल उनकी तकलीद कर दें। देखिए तकलीद जो है वो हम चंद मसाइल में करते हैं। तकलीद के बारे में ये गलतफहमी ना रहे कि तकलीद कोई पीरी मुरीदी वाली चीज़ है, हमने जैसे उनकी बयात कर ली है अब हम उनकी तस्वीर घर में लगाएंगे। नहीं, तकलीद में आप असल में मुज्तहिद के इल्म से रुजू करते हैं, मुज्तहिद के इल्म से रुजू करते हैं। मुज्तहिद का इल्म आम है, उसने सबके लिए फतवा दे दिया है, लिखा हुआ है किताबों में, आप जाएं उससे इस्तेफादा कर लें। तकलीद का ताल्लुक इस हद तक है, लेकिन ख्यालत और रहबरी है जिस समथिंग इंटायरली डिफरेंट। इसमें आप अपने तमाम तर इज्तमाही, सियासी, माशी, इकतदी जो मामलात हैं उसमें उनकी हिदायत के मुंतजर रहते हैं, जो वो हिदायत देते हैं उसके मुताबिक अमल करते हैं। तो तकलीद इबादी मसाइल में आमतौर पर की जाती है, इबादात में मामलात में, जबकि ये सियासी मसाइल में होगा। क्या हर मुखल्लिद का मुज्तहिद उसका वली फकीह होता है? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये कुछ लोग विलायत फकीह के नाम पर गलतफहमी फैला रहे हैं और वो कहते हैं हर मुखल्लिद का जो मुज्तहिद है वो उसके लिए विलायत फकीह है, और एक साहब ने सीना ठोक कर कहा मैं भी वली फकीह हूँ। देखिए वली फकीह ऐसा नहीं होता, वली फकीह वो होता है जिसके पास पॉलिटिकल पावर हो, जो उम्मत की सियासी क़यादत और रहबरियत करता है, और ज़रूरत पेश आए तो इस्लामी हुकूमत कायम करता है, उस हुकूमत के अंदर इस्लामी क़वानीन का निफास करता है, वह है वली फकीह। वह नहीं काम मुश्तहिद हो सकता है कोई? अगर किसी के मुश्तहिद और वली फकीह का हुक्म टकरा जाए तो देखिए मुश्तहिद और वली फकीह का हुक्म नहीं टकरा सकता। हाँ, वली फकीह अगर एक फ़िक़ही मसला बयान करता है, तकलीद वाला मसला, वो टकरा सकता है। उसमें तो आपको इख्तियार है, जिस मुज्तहिद की आप तकलीद करते हैं उससे रुजू करें, लेकिन असल में जो वली फकीह का डोमेन है, जो सियासी और इज्तिमाई मामलात हैं, वो एक आम मुज्तहिद उसके बारे में कुछ कहता ही नहीं है, उसका कंसर्न ही नहीं है वो, इसलिए सवाल ही पैदा नहीं होता कि वली फकीह का हुक्म और एक आम मुज्तहिद का हुक्म टकरा जाए। और अगर इज्तिमाई मामलात में टकरा जाए फ़र्ज करें तो वली फकीह की बात मानी जाएगी, मुज्तहिद की बात नहीं मानी जाएगी। क्या किसी मुज्तहिद को वली फकीह से इख्तलाफ का हक हासिल है? बिल्कुल हासिल है। इल्मी इख्तलाफ का हक हर एक को हासिल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माशरे में जो हुक्म नाफिज होगा वो होगा जो वली फकीह का हुक्म है। बस अपने तो ही मैंने बहुत जल्दी करने की कोशिश की, मैटर तो बहुत था इसमें, लेकिन यहीं रोक देते हम। कोई ज़रूरी सवाल है तो आप कर लें। एक मरतबा सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद।
हम इंतहाई ममनून और मशकूर हैं दानिश्वर मुअज़्ज़म प्रोफेसर डॉक्टर ज़ाहिद अली ज़ाहिदी साहब, जो कि असगरी आर्गनाइजेशन पाकिस्तान की निगहबान काउंसिल के मुअज़्ज़ज़ रुकन हैं। आगा साहब ने बहुत अच्छे अंदाज में दर्श दिया, कोई सवाल है तो काइंडली हैंड ऊपर करें, किसी को भी अगर कोई सवाल है तो अपना हाथ ऊपर करें, इसी रो में से आखिर तक। किसी को भी कोई सवाल हो तो, कोई सवाल नहीं है, मेहमानों को सवाल हो जाते हैं।
असल में टाइम ऐसा हो गया है कि इस वक्त जो है सवाल करने का मूड नहीं है, वक्त हो गया चूँकि नमाज का भी और मेरे ख्याल में लंच का भी, तो अच्छा सवाल है
बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत।
जी जी माइक देन को।
हाल कमेटी के दोस्त के गुजारिश आता है माइक पहुँचाए।
जी बिस्मिल्लाह। जी जी
हेलो सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि विलायत फकी का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ या पाकिस्तान में या शियों में इतना क्लियर नहीं है, काफ़ी एम्बिगुअस है, तो इसकी क्या वजह है? जबकि हम जो है वो काफ़ी अवेयर हैं, हमारे मकतब में काफ़ी अवेयरनेस है, मगर ये जब कॉन्सेप्ट आता है तो इसमें काफ़ी एम्बिग्यूटी बढ़ जाती है, तो ये थोड़ा क्लियर करेंगे इसकी क्या वजह है?
देखिए असल में हमारे यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं हैं, अभी तक लोगों का वजू सही नहीं है, नमाज के मसाइल का पता नहीं है, तकलीद अभी तक नहीं पता लोगों को, तो बहुत बुनियादी चीज़ें भी हमारे यहाँ अभी तक क्लियर नहीं है। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ जो दीन है वो ज़्यादातर उलमा के हाथों से लोगों तक नहीं पहुँचा, उलमा के हाथों से, उलमा की तादाद बहुत कम है और माशरे में उनकी इतनी गिरफ्त नहीं है, और दीन की तालीमात जो है जिस तरह पहुँचना चाहिए तो हमारे पास उलमा की तादाद चूँकि कम है, लोगों के अंदर दीनी अवेयरनेस कम है, तो आप देखेंगे कि लोगों का वजू का तरीका सही नहीं है। तो विलायत फ़कीह तो एक मुश्किल पेचीदा बहस है, इसलिए अगर विलायत फ़कीह का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो इसमें लोगों का कोई कसूर नहीं है। अभी आप देखें ना कि इनकलाब इस्लामी को 37 ईयर्स 38 ईयर्स हो रहे हैं, अभी हम बिल्कुल फंडामेंटल्स पर बातें कर रहे हैं, और वो भी जो है वो असगरिया के बरादरान के सामने, जो सिंध के मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा बाशऊर तबका आप ही लोग हैं, तो आपके सामने भी अभी बहुत ही फंडामेंटल बातें हो रही हैं, ज़्यादा एडवांस बहस कोई है नहीं इसके अंदर, तो इससे अंदाज़ा होता है कि अभी हम लोग जितने भी दीनी इशूज़ हैं उनमें काफ़ी पीछे हैं। इंशाल्लाह लोगों के अंदर मुताला का शौक़ बढ़ेगा, आप लोगों के अपने अंदर अवेयरनेस पैदा करें, आगे चल के लोगों के अंदर पैदा करें, तो और मामलात भी क्लियर होंगे, विलायत फ़कीह भी क्लियर होगी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जैसे कि आपने फरमाया कि अगर एक नई इस्लामी रियासत वजूद में आ जाए तो लामाला विलायत फ़कीह भी वजूद में आ जाएंगे, अब हमने ये तय करना है, हमने उनकी सलाहियतों को देखना है, जबकि हमारे मेंबरों से ही ये बात सामने आती रहती है कि भाई इमाम या वली मुकरर करने का अख्तियार किसी इंसान को नहीं है, ये सिर्फ़ खुदा ताला को है, तो इमाम का नायब मुकरर करने का अख्तियार या उनकी सलाहियतों को देखने का अख्तियार हमें कैसे है? और जैसा कि आपने एक ये बताया कि इस्लामी रियासत, अगर वो इस्लामी रियासत का क़याम कर देते हैं, अगर उनमें वो सलाहियतें हैं तो हम मान लेंगे उन्हें विलायत फ़कीह का, अगर हमने रुख अपना कर दिया हुआ है ईरान के या एक ही विलायत फ़कीह की तरफ, अगर हम किसी और को मानने के लिए तैयार नहीं है, चूंकि हमारे मुल्क में ऐसा कोई हो जो विलायत फ़कीह की उनमें खसूसियात हों, लेकिन हमारा रुख है एक तरफ, हम मानने के लिए तैयार नहीं है, अगर ईरानी कौम ने अपना विलायत फ़कीह कैसे मुंतखब किया, उन्होंने उनकी कौम ने उनको सपोर्ट किया, अगर हम अपने मुल्क से छोड़कर हम देख रहे हैं उधर ही तो हमें वहाँ ही नज़र आएगा, हमें यहाँ तो नज़र आएगा ही नहीं।
वेल असल में देखें आपका जो सवाल है ना उसमें मेरा ख्याल है कई गलत फहमियाँ हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक फर्जी सवाल है ना, ये एक फर्जी सवाल है, जो मैंने खुद भी कहा कि अभी तक ऐसा कोई एग्जिस्ट करता नहीं है, किसी और रियासत में इस्लामी कवानीन का नफाज हुआ ही नहीं है, इवन इराक सद्दाम से बेशक आज़ाद हो गया और वहाँ शियों का काफ़ी इन्फ्लुएंस है और उलमा का काफ़ी इन्फ्लुएंस है, آیتاللہ سیستانی کی مرجعیت کا ایک بڑا مقام ہے، بڑا وقار ہے، اور بعض اجتماعی معاملات میں بہت ڈیسائسو رول پلے کیا ہے آیتاللہ سیستانی نے، لیکن انہوں نے وہاں پر اسلامی حکومت کا اعلان نہیں کیا۔ عراق میں ایک جمہوری حکومت ہے۔ دیکھیں، ہر ملک کی اپنی ایک ڈیموگرافی ہے، ہر ملک کی جو پاپولیشن ہے نا، ان کا اپنا ریشو ہے، اس کے مطابق وہ اپنی اچھائی برائی کو سمجھتے ہیں۔ ہماری مجبوری یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا ایک سرحدوں کے اندر تقسیم ہو گئی ہے۔ ہم اس وقت ان سرحدوں کو ختم نہیں کر سکتے، وہ تو امام زمانہ آ کے انشاءاللہ کریں گے۔ چونکہ ان سرحدوں کے اندر حکومتیں تقسیم ہو گئی ہیں، اب ہر سرحد کے اندر جو آبادی کا ریشو ہے وہ اس کے مطابق دیکھتے ہیں۔ عراق میں سنی بھی ہیں اور شیعہ بھی ہیں اور کرد بھی ہیں، لبنان کے اندر شیعہ بھی ہیں، سنی بھی ہیں، دروز بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، پاکستان کے اندر شیعہ بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں۔ ہر ملک کا اپنا ڈیموگرافی ڈفرینٹ ہے نا، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایران کا نظام پاکستان میں نافذ ہو جائے، ایران کا نظام عراق میں نافذ ہو جائے، ایران کا نظام لبنان میں نافذ ہو جائے۔ نہ امام خمینی نے کبھی کہا کہ ہم یہ نظام ولایت فقیہ پوری دنیا میں نافذ کرنا چاہتے ہیں، نہیں۔ امام خمینی نے تو ایک بات کہی کہ کب تک تمہاری قسمت کے فیصلے واشنگٹن اور ماسکو میں ہوتے رہیں گے، اپنی قسمت کا فیصلہ خود کرو، یہ اصل روح ہے اس کی۔ تو امام خمینی نے بھی نہیں کہا، نہ رہبر معظم نے کبھی کہا کہ نظام ولایت فقیہ پوری دنیا میں نافذ ہو جائے گا۔ تو اس وقت تک دنیا کے کسی ریاست کے اندر اسلامی قوانین نافذ ہوئے ہی نہیں ہیں کہ ہمارے سامنے یہ کنفیوژن آئے کہ ولی فقیہ یہ ہیں یا وہ ہیں۔ اس وقت تو ولی فقیہ ایک ہی ہے، نمبر ون۔ نمبر ٹو یہ کہ ولی فقیہ ایرانی ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو عراق میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ایرانی ہیں۔ آیت اللہ سیستانی، سیستان کہاں ہے؟ سیستان بلوچستان ایران میں ہی ہے نا۔ آیت اللہ خوئی کہاں کے تھے؟ ایران کے تھے۔ آیت اللہ سیستانی فارسی میں باتیں کرتے ہیں۔ ہم ابھی پچھلے دنوں ایک وفاظ کا گروپ لے کر گئے، انہوں نے گفتگو کی، فارسی میں کی، ویسے عربی میں باتیں کر رہے تھے۔ ہمیں دیکھ کر انہوں نے کہا کہ انہاں فارسی میں نولان نگار ہے پاگا، اس کے بعد انہوں نے ساری تقریر فارسی میں کی۔ تو فارسی بولتے ہیں، ان کے گھر میں فارسی بولی جاتی ہے، وہ بھی ایرانی ہیں۔ ایرانی سے کہاں کہاں بچیں گے آپ؟ شیخ سروق ایرانی تھے، ان کے والد ابن بابا یا قمی ایرانی تھے، شیخ کلینی اصول کافی والے ایرانی تھے، علامہ امینی الغدیر والے ایرانی ہیں، تفسیر المیزان والے علامہ طباطبائی ایرانی ہیں۔ یہ تو شیعوں کی بات ہو رہی ہے، سنیوں میں بخاری، مسلم، ابو حنیفہ، نسائی، حاکم، سب کہاں ہیں؟ سب ایرانی ہیں۔ تو ہمارے یہاں تو ایسی کوئی لڑائی نہیں ہے ایرانی اور عراقی والی۔ ایرانیوں نے علمی خدمات بہت کی ہیں، وہ ابھی آگے آگے، کچھ عراقی بھی، کچھ عرب بھی ہیں، صدر فیملی عرب فیملی ہے، شہید باقر صدر اور جو دوسرا خانوادہ ہے ان کا پورا، یہ صدر جو ہے وہ عرب فیملی ہے، باقی فیملیز وہ ایرانی ہیں۔ تو یہ علماء ہیں، ان کا وہ پوائنٹ آف ویو ہے ہی نہیں۔ یا کچھ لوگ اس طرح بھی کچھ آگ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس طرح سنیوں میں ہے دیوبند اور بریلی دو مدرسے ہیں، دیوبند سے دیوبندی بن گئے، بریلی سے بریلی بن گئے، اس طرح نجف اور قوم شاید دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ بھائی نجف پہ جو بیٹھے ہوئے وہ بھی قوم کے لوگ ہیں بہت سے، بڑی تعداد میں۔ اور نجف کا حوضہ کس نے آباد کیا تھا؟ شیخ طوسی نے۔ نجف کا حوضہ کس نے بنایا؟ شیخ طوسی نے بنایا۔ طوس کہاں ہے؟ ایران میں، مشہد کا نام طوس ہے پرانا۔ تو یہ ایرانیوں کا انفلوئنس آج سے نہیں، آئمہ طاہرین کے زمانے سے ہے کہ ایران میں بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے ہیں۔ اپنے ملک میں، اپنے ملک میں تو اسلامی قوانین ہی نہیں آ رہے ہیں۔ ابھی تو آپ الیکشن میں کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں، جو جائے کہ آپ اقتدار ہاتھ میں لیں گے اور ولی فقیہ بنائیں گے۔ ابھی تو پہلے آپ پہلے کونسلر بنائیں، قومی اسمبلی میں بھیجیں، صوبائی اسمبلی میں بھیجیں، کچھ کھمبے لگوائیں، سڑکیں بنوائیں شیعہ آبادیوں میں، تو بعد کی باتیں یہ سب۔ تو یہ نظام ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر ایرانیوں کو آگے لایا جا رہا ہے۔ آپ کو ایک چیز اور بتا دوں تاریخی اعتبار سے، ایران میں جب شیعوں کی حکومت قائم ہوئی، صفویوں کی حکومت، شاہ تماس جو صفویوں کا حکمران تھا، اس نے یہ چاہا کہ ایران کے اندر کچھ اسلامی قوانین نافذ کیے جائیں، تھا وہ بادشاہ ایرانی تھا، لیکن اس نے چاہا کہ کچھ اسلامی قوانین ایران میں نافذ کیا جائیں، ایرانیوں کا کی حکومت صفویوں کی قائم ہو گئی۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے جبل عامل لبنان سے ایک فقیہ شیعہ مجتہد کو بلایا جن کا نام تھا محقق کرکی، मौकी करा कि वो जबल आमिल लुबनान से बुलाकर और उसके लिए उसने नोटिफिकेशन जारी किया कि ये इमाम ज़माना के नुमाइंदे हैं, जो ये कहेंगे दीन के सारे मामलात में इनकी हिदायत पर अमल किया जाए। अल्लामा मजलिसी खुद मौजूद थे उस जमाने में, ईरानी थे अल्लामा मजलिसी। तो ईरानी वालों ने तो नहीं कहा कि ये अरब क्यों आ गया हमारे पास, और आइम्मा तारीन सारे अरब हैं, हम अरब की तरफ क्यों देखते हैं। तकलीर में भी कुछ लोग ये कहते हैं कि ये आप लोग ईरानी मुश्तहिर की तकलीर क्यों करते हैं, इराकी मुश्तहिर की तकलीर क्यों करते हैं, पाकिस्तानी मुश्तहिर की तकलीर करें। अरे भाई, आलम की तकलीर होगी ना, आलम मोस्ट लर्नेड। अगर मोस्ट लर्नेड मौजूद है, वो इराकी हो, ईरानी हो, पाकिस्तानी हो, अफगानी हो, उसकी तकलीर की जाएगी। जब तक मोस्ट लर्नेड का तायुन हो जाएगा, हम उसकी तकलीर करेंगे, सिर्फ इस बुनियाद पर करेंगे कि ये पाकिस्तानी है। फिर अगर आप कहेंगे पाकिस्तानी की तकलीर करो, तो हम और तासुब में आगे बढ़ेंगे, हम कहेंगे हम पंजाबी की क्यों करें, हम सिंधी की करेंगे। कराची वाले कहेंगे हम तो कराची वालों की करेंगे, हम सिंध वालों की क्यों करेंगे। कराची के अंदर अमरोहा के लोग अलग करेंगे, अतरोला के लोग अलग करेंगे, लखनऊ के लोग अलग करेंगे, दिल्ली के लोग अलग करेंगे, फिर तो तकसीम दर तकसीम हो जाएगी ना। तो असल में तकलीर किसकी हो रही है, आलम की, आलम मोस्ट लर्नेड। वो मोस्ट लर्नेड उसकी नेशनलिटी कुछ भी हो, वो उसकी पैदाइश कहीं भी हुई हो, अगर वो सबसे ज़्यादा काबिल है तो उसकी तकलीर की जाएगी। तो पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह उलमा हैं, और आहिस्ता आहिस्ता और इजाफा उनमें हो रहा है, अल्लाह उनकी तादाद में और इजाफा फरमाए, एक से बढ़ के एक काबिल लोग मौजूद हैं। लेकिन एक हकीकत है कि जो दुनिया में जो गिने चुने जो टॉप लेवल के मुश्तहिदीन हैं, जिनकी तकलीर हो रही है, वो चंद हैं। उनमें कुछ अरब भी हैं, कुछ ईरानी भी हैं, आपकी मर्ज़ी है, जो आपके नज़दीक आलम साबित हो जाए उसकी कर ले। लेकिन वली ए फकी, एक और छोटी सी बात कर दूँ, वक्त काफ़ी हो गया हालांकि, कि आपने ये जो ये कहा ना कि इमाम तो आप खुद नहीं बना सकते। देखिए, इमाम हम खुद नहीं बना सकते, नबी हम खुद नहीं बना सकते, क्योंकि ये इलाही मनासिब हैं। और हमारी डिबेट है ही इसी बात पर कि इमाम उम्मत नहीं बनाएगी, इमाम खुद खुदा बनाएगा। ठीक है, खुदा ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा, इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, मैं तुम्हें लोगों का इमाम बना रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ, उम्मत नहीं बनाएगी। तो वो इमाम, उनकी शराइत ऐसी है कि उम्मत बना ही नहीं सकती, उसके लिए मासूम होना ज़रूरी है। मासूम की शनाख्त आम इंसान कर ही नहीं सकता, मासूम तो वो है जिसको खुदा ने मासूम बनाया। बस खुदा बताएगा कि यह इमाम, और वही इमाम होगा। और हम जिनकी बात कर रहे हैं, ये इमाम मासूम नहीं है, ना मंसूस हैं, ना इनका नाम नस के अंदर आया है, इनका नाम नस के अंदर नहीं आया है, बल्कि नस के अंदर, अहादीस के अंदर, आयात के अंदर वो सिफात और खसूसियात आ गई हैं जो लीडरशिप के लिए ज़रूरी है। वो सिफात और खसूसियात आप भी तो कंपेयर करते हैं ना, आप कहते हैं ना कि अली का इल्म देखो और फलां का इल्म देखो, अली की शुजात देखो और फलां की शुजात देखो, अली का तकवा देखो और फलां का तकवा देखो। ये क्यों करते हैं कंपेयर? इसलिए कि क़यादत के लिए, रहबरियत के लिए ये शराइत हैं, इल्म ज़रूरी है, शुजात ज़रूरी है, तकवा ज़रूरी है, दीनी बसीरत ज़रूरी है। तो इन चीज़ों को देखकर एक ऐसी लीडरशिप, और वह हम नहीं करते, हम और आप नहीं करेंगे। असल बात यह है कि वो जो इस ज़माने में साहिब विलायत है, उसकी शनाख्त की जाती है, उसको बनाया नहीं जाता, उसको शनाख्त करना उम्मत का काम है कि इस ज़माने में वो कौन अहल तरीन शख्स है कि जो जिसके हवाले ये जिम्मेदारी की जाए, उसकी शनाख्त होगी, उसको बनाया नहीं जाएगा। तो उस शनाख्त करने के लिए कुछ शराइत हैं, वो शराइत भी आम लोग नहीं देखेंगे, वो ख़ास लोग देखेंगे।